نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد والذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. حضرات اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے اس نے رمضان عطا فرمایا اور اس میں توفیق عطا فرمائی بہت سے لوگوں کو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد دو عشرے رمضان کے گزر گئے اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہوئے. تیسرے عشرے میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو توجہ دلائی گئی کہ دیکھو اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے تمہیں خیر حاصل کرنے زیادہ زیادہ خیر حاصل کرنے کے سلسلے میں اور وہ برکات رمضان رمضان رکھتی ہیں اور تم کو جو حاضر ہونی چاہیے اس کے لیے مہلت اب صرف ایک ہفتے کی رہ گئی. ظاہر ہے کہ رمضان کے ختم ہونے پر رمضان کی کتاب بند ہو جاتی ہے اور پھر گیارہ مہینے کے بعد چھٹی. یہ اللہ کی کتاب ہے دین سکھانے اور دین پر عمل کرنے پر متوجہ کرنے کے لیے جو رمضان کی صورت میں ہم کو ملتی. ہم اس سے واقف ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور پھر اس پر چلنے کی ہم کوشش کریں. دراصل رمضان ہم کو گناہوں سے گناہوں کا کفارہ کرنے اور گناہوں سے اپنے کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ سال بھر ہم سے جو لغزشیں ہوئیں اور سال بھر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں ہم اس کی تلافی رمضان میں کر لیں. رمضان گویا کہ ایک ایسا موقع ہم کو دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے کو پاک کر لیں ان گندگیوں سے جو ہمارے لگ گئی ہیں. گندگی وہ کہ جو مادی ہوتی ہے یعنی زمینی چیزوں کی ہوتی ہے وہ تو ہم کو نظر آتی ہے اور وہ گندگی جو اندر کی ہے جو مٹی کی اور مٹی کی چیزوں سے نہیں بنی وہ نظر نہیں نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی لیکن وہ اندر اثر انداز ہونے والی چیز ہوتی. اثر ہونا الگ چیز ہے اور عمل میں آنا الگ چیز ہے. عمل سے اثر پیدا ہوتا ہے اثر سے عمل پیدا ہوتا ہے دونوں میں تعلق ہے. یعنی پر اثر پڑتا ہے کسی چیز کا تو وہ اس کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے تو عمل کا اثر ہوتا ہے. جو عمل کا جو اثر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے وہ اندر اندر رہتا ہے. مثلاً جھوٹ بولا آدمی نے جھوٹ کا اثر اب اس کے اندر ہے وہ رہے گا اور گناہ کیا اس نے تو گناہ کا اثر اندر رہے گا. دیکھنے میں اور صاف ستھرے پاکیزہ معلوم ہوں گے اور کسی طریقے سے اندازہ نہیں ہوگا دیکھنے والے کو بلکہ خود آدمی کو دھوکا ہوگا وہ سمجھے گا کہ کوئی بات نہیں لیکن وہ اندر پہنچ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے کہ انسان کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس سے گندگیاں تو اس سے پیدا ہوں گی اور گندگیوں میں وہ پڑے گا چھوٹی گندگی ہو یا بڑی گندگی ہو यानी गुनाह, गुनाह गंदगी। उसके इजाले के लिए अल्लाह ताला ने अपना कलाम रखा है और आदमी और आमाल बताए हैं कि इन आमाल से गुनाह धुल जाते हैं। वो अमल क्या है? अमल हकीकत में तौबा है। तौबा का अमल एक नेमत है जो ईमान वालों को मिला है, वरना उनसे जो गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, वो अंदर बाकी रहते हैं, महफूज हो जाते हैं। किताब बंद हो जाती है, किताब के अंदर वो महफूज हो जाते हैं। जब किताब खुलेगी तो नजर आ जाएंगे। किताब कब खुलेगी? कयामत में खुलेगी, आखिरत में खुलेगी, और उस वक्त आदमी बिल्कुल बेबस होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह इस बात को बताया कि वहां तुम बेबस होगे, ये समझ लो। वहां खुशामद भी करोगे तो तुम्हारी खुशामद सुनी नहीं जाएगी, और कुछ चीज कोई हो ही, कोई चीज ऐसी होगी नहीं जिससे तुम अपना फायदा उठा लो। यहाँ दुनिया में तो अल्लाह ने हमारे लिए जमीन के अंदर सारी हमारी जरूरत चीजें रख दी हैं। हमारा काम सिर्फ उनको निकालना और इस्तेमाल करना होता है। हमारी जरूरत की हर चीज अल्लाह ने जमीन में रख दी है, जमीन के अंदर, और हमको अकल और इल्म दिया है कि हम उसको तलाश कर लें और उसे हम फायदा उठाएं, और हमारे फायदा उठाने के लिए रखा है, हमारा नहीं है। ये जितने फायदे हैं, माली फायदे, ये सब हमारे लिए हैं। अल्लाह हमारा कि ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। कुरान में है कि अल्लाह की नेमतें जो हैं ये किसके लिए हैं? हम रखती हैं तुम्हारे लिए तो रखती, लेकिन उनको इस्तेमाल तुम पाकिजगी के साथ करो, गंदगी के साथ न करो। तुम उन चीज़ों को गंदगी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो अगर उनको अल्लाह के नाम से धो ना लो। अल्लाह के नाम से वो धुल जाती हैं चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जमीन की चीज़ें, ये तो बहुत ज़मीनी चीज़ें, घटिया हैं और पाक नहीं हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के नाम से लेंगे तो वो पाक हो जाएंगे। अल्लाह के नाम लेकर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें पाक हो जाएंगी, और वो हमारे जिस्म के अंदर बाकी रखेंगे। और अगर हमने उसको कोई दूसरे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, मुझे मना है, तो वो नाबाकी लाएंगी, और वो नाबाकी जो है वो नाबाकी होगी जो दिखाई नहीं देती। बदन में जो नाबाकी लग जाती है हम देख लेते हैं, लेकिन वो नाबाकी जो होती है, जो अमल की नाबाकी है, वो आदमी के अंदर होती है और महफूज हो जाती है। तो अल्लाह की बड़ी नेमत है कि उसने तौबा ऐसी चीज रखी है कि वो नापाकी को दूर कर दे। अगर सही तौर पर तौबा की जाए, और तौबा सही तौर पर कैसे होती है कि आदमी को अपने गुनाहों पर अफसोस हो। अफसोस भी ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं कि नजर आए, अंदर अंदर अफसोस हो रहा है आदमी के, तो किसी को क्या मालूम कि इसको अफसोस हो रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। महसूस होने वाली चीज असर, अफसोस हो कि हाय कैसे हमसे गुनाह हुए, हमसे गुनाह हो गए, अब अंजीरा है, अफसोस है, और उनको फौरन छोड़ दिया उसने, और अल्लाह से कहा है अल्लाह हमसे गलती हो गई, माफ कर दें आप, तो अल्लाह तला माफ कर देगा। और माफ कर देने का मतलब क्या है कि वो जो गुनाह की गंदगी है वो साफ हो गई, धुल गई। जिसे हम जाहिरी गंदगी, जिसम वाली गंदगी को पानी से धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो अंदर की गंदगी जो है अल्लाह के नाम से दूर हो जाती है। अल्लाह के नाम लेने से, तौबा करने से, अल्लाह से नदामत के साथ अल्लाह से कहने से वो गंदगी दूर हो जाती है। और इसके लिए बेहतरीन जमाना अल्लाह ताला ने रमजान का रखा है, उसने ताकत बढ़ा दी है। गंदगी को दूर करने की जो ताकत है वो अल्लाह ने बहुत बढ़ा दी है। आम दिनों में जितनी ताकत चाहिए गंदगी को दूर करने की धुलाई, जैसे हम गंदगी जिसकी गंदगी धोते हैं एक मरतबा दो मरतबा तीन मरतबा पानी डाल बार बार उसको साफ करते हैं तब जाके वो साफ होती है। अगर सब गंदगी है बहुत सिमट जाने वाली तो उसको हमें बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत रगड़ने के बाद वो दुआ होती है। अगर मामूली गंदगी है थोड़ा सा पानी से उसे बहा देते हैं। यही मामला अंदर की गंदगी का भी है। बाहर गंदगियां हैं जिनके लिए हमें ज्यादा ताकत से धुलाई की जरूरत पड़ती है, और बाहर गंदगियां मामूली ताकत की धुलाई से साफ हो जाती हैं। तो रमजान में अल्लाह ताला ने गंदगी धोने की ताकत ज्यादा बढ़ा दी है, और ये मौका खास तौर पर हमको अदा किया है कि इसमें हम अपनी गंदगियों को धो लें। वो कैसे धोएंगे? अल्लाह का मामला है तो अल्लाह से मांग कर और अल्लाह से कहकर, अल्लाह से रो धो कर आदमी माफ करा देगा, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह ने वादा किया कि हम माफ कर देंगे, अगर तुम वाकई दिल से तुम माफी मांग रहे हो तो हम माफ कर देंगे, लेकिन अगर दिखाने के लिए माफ कर रहे हो तो नहीं। और हम दिल का हाल जानते हैं, रमजान दिल का हाल हम जानते हैं, हम तो छिपा नहीं सकते। तुम वाकई अगर हमसे मांग रहे हो और जज्बा है तुम्हें मांगने का और तुम्हें एहसास है तो माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुम दिखावे के लिए कर रहे हो तो नहीं होगा, हम जानते हैं। और अगर वो हमारी वो गंदगी किसी को नुकसान पहुंचा कर है, किसी का हक मार के है, या जिन चीज़ों की ताकीद है कि तुम आपस में इस तरह रहो, इस तरह मामला करो, उसमें हमने गड़बड़ किया है, तो फिर अल्लाह ताला कहता है उनसे भी माफ कराओ। तुमने हमारी बात को रद्द किया तो वो गुना हमसे ताल्लुक रखता है, दूसरों को ईजा पहुंचाई तो दो डबल गुना हो गया कि हमारी हमारे हुक्म के खिलाफ भी किया और दूसरों को भी ईजा पहुंचा दी, दो बातें हो गई ना। यानी अल्लाह ने मना किया कि देखो दूसरे को ईजा न पहुंचाओ, अब ईजा दूसरे को पहुंचाई तो डबल गुना बात हो गई, अल्लाह कहना भी नहीं माना और दूसरों को तकलीफ भी पहुंचाई। और अगर सिर्फ इबादत का मामला है फिर अल्लाह से ताल्लुक होती है, दूसरों से उसका ताल्लुक नहीं है, तो उसमें अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है, हम तो माफ कर देंगे, लेकिन उसमें तुम उससे भी माफ कराओ। तो रमजान में इसका ही मौका खास तौर पर दिया गया है कि अगर हमने किसी को ईजा पहुंचाई है, मसलन उसको माल खुद घुट कर दिया है, उसकी चीज ले ली है बगैर उसकी इजाजत के, या उसको बुरा भला कर दिया है, गाड़ी दे दी है, या उसको कोई नुकसान कर दिया है, या उसको जलील किया है, उसको तकलीफ पहुंचाई है, उसकी अहानत की है, बहुत सी चकलें होती हैं। हम आपस की जिंदगी में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों से वास्ता पड़ता है, आपस में लेन देन का मामला होता है, एक दूसरे के साथ अखलाक बरतने का मामला होता है, और एक दूसरे की चीज़ों का मामला होता है कि हम मालिक नहीं है, मालिक दूसरा है, लेकिन हमने कब्जा कर लिया उस पर, या हमने दादा ले लिया जितना लेना चाहिए उसका माल, तो उसमें डबल मसला हो जाता है। तो रमजान में खास एक बात ये भी रखी गई है कि हम दूसरे की, अगर हमने दूसरे की तो नुकसान पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, तो उससे भी हम माफी मांग लें, उससे भी कहने भैया माफ कर दो या ले लो जो हमने तुम्हारी चीज़ अगर हमने ली है गलत तो हम वापस कर देते हैं, तुम्हें वापस कर देते हैं, और अगर हमने तुमको तकलीफ पहुंचाई है तो उससे हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, तुम माफ़ कर दो, तुम उसके दावेदार न बनो। और अल्लाह ताला से फिर अल्लाह ताला से माफ़ करा लेगा आदमी, दोनों से माफ़ कराना होगा, याद है साथ साथ, वरना होगा क्या, कयामत में वो शख्स जिसका हमने नुकसान किया है, ईजा पहुंचाई है, वो ईजा और नुकसान उसका हक बन जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा इनका नुकसान जो तुमने किया है अदा करो, कहाँ से अदा करेगा। कहाँ झगड़ा करेगा, और वहाँ वो माफ भी नहीं करेगा, इसलिए कि उसको उसके फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह ताला इसकी नेकियां उसको दिला देगा। वहाँ सिक्का जो है वो नेकियों का सिक्का चलेगा, ये सिक्का नहीं चलेगा, नेकियों का सिक्का चलेगा। आज नमाज पढ़ाई, नमाज एक सिक्का बन गया, और अच्छा कोई काम किया वो एक सिक्का हो गया, वहाँ चलेगा। भाई इसका हक अदा करो, नहीं अदा कर सकते अच्छा इनकी इतनी नमाजें इनको दे दो, दे दीजिए। अब इन्होंने नमाज पढ़ी थी गई, इन्होंने कोई अच्छा काम किया था गया, इसलिए कि वहाँ वहाँ वो अदाई करनी पड़ेगी। इनका गीबत का मसला है, इसमें हम लोग बहुत मुबतला हैं, हम सब मुबतला हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है गीबत, बहुत खतरनाक। उसके लिए तो यह आता है कि जिसकी गीबत की कयामत में उसकी उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी गीबत के बदले में। गीबत गोया के वहाँ पर एक बाकायदा एक चीज़ उनके सामने आ जाएगी, यहाँ तो वो दिखाई नहीं देती, वहाँ दिखाई देगी ये गीबत है ये। तो इनका ये हक तुमने मारा है, गीबत की तो उसका हक मारा है, ये हक अदा करो, रोजा अदा करो, अपनी नमाज दे दो, अपना रोजा दे दो, तुमने खैर खैरात किया है वो दे दो इनको। तो गीबत जिसकी की गई है वो तो वहाँ नफे में रहेगा, उसको बगैर किए मिलेगा, जो अमल नहीं किया वो अमल उसको मिल रहा है उस हक में जो उसका हक मारा था जिंदगी में। यहाँ तक आता है कि उसके अगर सारे अमाल दे दिए गए, अपनी इतनी गीबत की है कि उसके सारे अच्छे काम जो हैं वो उसको दे दिए गए दूसरों के, अब क्या होगा, और बाकी है अभी हक। तो अब उसकी उसकी जो बुराइयाँ हैं, उसके जो गुनाह हैं, वो इनकी तरफ मुंतकिल कर दिए जाएंगे, इसलिए वहाँ इंसाफ कराया जाएगा। जो आदमी से गड़बड़ हुआ है वहाँ उसको खुशी होगी, जिसका हक मारा गया है वह हक दिलाया जाएगा। हक मारने और दिलाने का मतलब जहन में रहना चाहिए कि वो नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ नहीं महसूस होता है, नज़र ही नहीं आती, जहन बाद वक्त नहीं जाता इस बात की तरफ, लेकिन वो गंदगी के तौर पर, वो एक गलत काम के तौर पर आदमी के अंदर वो माफूल होता रहता है। वहाँ वहाँ किताब खुलेगी और फिर उसका हिसाब अल्लाह ताला की तरफ से होगा, इनका हिसाब अदा करो, इतना इतना तुम्हें फला फला का हक मारा है, जो चाहे से दो अमल करेगी, तो अमल जो है उसको दे दो, कितना अमल तुम लेके आए हो। आदमी जाहिर है कि कोई ज़्यादा अमल लाया होगा, कोई कम अमल लाया होगा, वहाँ उसी हिसाब से उसके अमल मुंतकिल कर दिए जाएंगे। तो भाई अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम किया है, एहसान किया है, तो रमज़ान हमें एक ऐसा मौका हर साल अल्लाह ताला देता है जिसमें हम अपने इन गंदगियों को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि आखिरत में हम पाक और साफ होकर जाएं, और आखिरत में हमको अदायगी न करनी पड़े। हमें जो हम पर जो हक आयल होता है उसको अदा न करना पड़े, वरना आदमी कितनी नेकियाँ लेके जाएगा, अगर वो नेकियाँ जो बेचारा करके गया है कुर्बानियाँ देकर वो दूसरों में दे दी गई, तो बेचारा तो बहुत ही खसारे में है। आगे बाद जितनी रकम है वो उसने जज ने कह दिया कि इनकी इतनी रकम जो उनको दे दो, उनकी तुमने रकम इतनी मारी है तो उसमें इतनी रकम ले लो, और उसके बाद बेचारे के बाद उतना ही सरमाया और दे दिया, वो खल्लास हो गया, और वहाँ फिर वहाँ अमल करने का मौका नहीं होगा, अमल नहीं रखा गया दुनिया की ज़िंदगी में। तो भाई अजीज़ों, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है कि रमज़ान के जो दिन बाकी रह गए हैं उसमें अपनी जो सफाई कर सकते हैं वो अपनी सफाई करें, ताकि हम रमज़ान जो ख़त्म हो तो हम पाक साफ होकर ज़िंदगी शुरू करें, और हम महफूज रहें फिर उन खतरात से जो बात पेश आ सकते हैं हमारी कोताही, हमारी बेअमली की वजह से। अल्लाह ताला मुझको भी तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी अता फरमाए। और इस अशरे में एक रात जिसको लैलतुल कद्र कहते हैं वो खास तौर पर इस मकसद के लिए रखी गई है कि उसमें जो अमल किया जाएगा वो अमल 1000 महीनों की के अमल के बराबर होगा, 1000 रातों के अमल के बराबर होगा। और ये इसीलिए है, कहकर है कि इंसान बहुत ज़्यादा अमल नहीं कर पाता, मोमिन आदमी तो अल्लाह ताला चाहता है अगर बहुत ज़्यादा अमल उसके हिस्से में आए तो उसने कद्र को खास तौर पर इसके लिए कर दिया है कि उसमें जो इबादत होगी उसमें जो अमल होगा वो 1 रात का अमल जो है वो 1000 रातों के अमल 1000 महीनों की रातों के अमल के बराबर होगा। वो भी अब ताख रातों में होती है, 1 ताख रात तो गुजर गई है, अब 4 ताख रातें बाकी हैं और ख़ास तौर पर 27वीं शब को ज़्यादा उसका हवाला दिया गया है। यहाँ ज़्यादातर वो रात 27वीं शब को होती है या किसी वित्र रात में होती है, यानी 21वीं शब या 23वीं शब या 25वीं शब या 27वीं और फिर 29वीं शब। तो इसमें कहा गया कि तलाश करो, यानी वो ये नहीं है कि कहकर आएगी कि आज शब कदर है, वो होगी आदमी अमल करेगा तो वो शब कदर अमल करेगा तो वही उस अमल की कीमत बढ़ जाएगी। वरना आम दिनों में एक नेकी 70 नेकी के बराबर होती है रमज़ान में, अल्लाह ताला ने 70 गुना कर दिया है फ़ायदा रमज़ान का, इसीलिए उसमें हम नेकियां करके और उसके बाद तौबा करके और उसे अपनी गलतियां माफ करा के हम इस महीने को अपने लिए एक सफाई दिलाने वाला महीना बना लेंगे और हम फायदा उठाएंगे। वाखर जवान صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وعلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أمرنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بذكر ہمارے خطام و گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو اس مبارک دنوں سے زیادہ ادا اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور عرضی کے لائق جو اعمال ہیں جو زیادہ عرضی دلانے والے اعمال ہیں ان کو اختیار کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو ہمارے لیے زیادہ مبارک بنا اس مبارک کو اور ان راتوں کو جو اس لیے ہیں زیادہ ہم کو فائدہ اٹھانے یہی اپنا روزگار ہماری سزاؤں کو معاف کرنا اپنی رحمتوں اور اس ماہ کی برکتوں سے ہم کو نواز صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علی وسلم 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 علی وس